हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 3 साल बाद रायजादा मैंशन अंधेरी में डूबी हुई थी। रात के 11 बज रहे थे। बाहर घुप अंधेरा फैला था और मैंशन के अंदर भी अंधकार अपना साम्राज्य पसारे बैठा था। सभी नौकर अपने क्वार्टर में जा चुके थे। इस वक्त वहाँ एक परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। अजीब सा सन्नाटा पसरा था वहाँ, और उस सन्नाटे में कुछ धीमी धीमी सी आवाज़ें गूंज रही थीं जो अर्णव के स्टडी रूम से आ रही थीं। स्टडी रूम में अर्णव और कबीर आमने सामने लगे काउच पर बैठे थे। सामने लगी राउंड टेबल पर बियर की बोतल और 2 ग्लास नज़र आ रहे थे। अर्णव, मिस्टर भट्ट की तरफ से इनविटेशन आया है और ख़ास रिक्वेस्ट भी आई है कि इस बार तुम उनकी पार्टी में ज़रूर शामिल हो। कबीर ने बियर की एक घूंट लेते हुए बात शुरू की, पर जैसा कि उसको पहले से ही अंदाज़ा था, अर्णव का रिस्पॉन्स एकदम ठंडा था। तू जानता है कि मैं पार्टी वार्टी में जाना पसंद नहीं करता, कोई बहाना बनाकर इनकार कर देता, मुझे ये बात बताने की क्या ज़रूरत थी? अर्णव, कब तक खुद को इस घर की चारदीवारी और ऑफिस में कैद रखेगा? भाभी क्या गई, तूने तो जैसे ज़िंदगी से ही मुँह मोड़ लिया है, खुद को इस घर से जुड़ी उनकी यादों और काम तक सीमित कर लिया है। अपने बनाए इस कैदखाने से बाहर निकल मेरे यार, इनके अलावा ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है। कबीर, जो अर्णव के इस तरह के व्यवहार से परेशान हो चुका था, उसने उसे समझाने की कोशिश की, पर अर्णव का चेहरा सपाट बना रहा। उसने ग्लास उठाकर अपने लबों से लगाते हुए गंभीर स्वर में जवाब दिया, ये कैदखाना ही मेरा सुकून है और उसकी यादें मेरे जीने की वजह। उसके बिना कहीं और जाने का मेरा मन ही नहीं करता। दार्जिलिंग तो चला जा मेरे यार, वहाँ से भी तो तेरी और भाभी की यादें जुड़ी हैं, जाकर उन पलों को दोबारा जी, इतनी हसीन जगह है, जाएगा तो तेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, भट्ट साहब भी खुश हो जाएंगे, तुझे भी बेहतर महसूस होगा इस कैदखाने से निकलकर। मान मेरी बात, अच्छा मौका है, अपने बनाए इस खोल से खुद को बाहर निकाल यार। अगर तू यूं ही घर में कैद रहेगा, कहीं जाएगा आएगा नहीं, किसी से मिलेगा नहीं, लोगों और दुनिया से यूं ही कटता रहेगा, तो भाभी कैसे मिलेगी तुझे? भूल मत अर्णव, किस्मत भी हमारा साथ सिर्फ तब देती है जब हम मेहनत करते हैं। अगर तू दुनिया से कटकर इस घर में कैद रहेगा, तो भूल जा कि भाभी तुझे कभी वापस मिलेगी, क्योंकि वो खुद से गई जरूर है, पर खुद से वापस आएंगी नहीं। अगर तू वाकई में वापस उन्हें पाना चाहता है, तो हाथ पैर तुझे ही मारने होंगे। क्या पता कहीं किसी जगह किसी मोड़ पर इत्तेफाक से तेरी भाभी से मुलाकात हो जाए, पर उसके लिए तुझे यहाँ से तो निकलना होगा। कबीर ने एक सच्चे दोस्त की तरह एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की थी। अर्णव बियर की घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए खामोशी से और बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। गलत तो नहीं कह रहा था वो, यूं खुद को घर और ऑफिस तक सीमित रखने, हाथ पर हाथ धरे बैठने, दुनिया से मुंह फेरने से तो कुछ हाथ नहीं लगना था। भले ही उसने धृति से वादा किया था कि उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, पर इत्तेफाक से मिलने के लिए भी उसे बाहर निकलना ही था, खुद से तो वो वापस आने वाली नहीं थी। अर्णव ने गहराई से उसकी कही बात के बारे में सोचा, फिर सर हिलाते हुए हामी भर दी, ठीक है चला जाता हूँ, टिकट बुक करवा दे। कबीर, जो बीते 3 सालों से उसे उस अनदेखे पिंजरे से बाहर निकालने की जद्दोजहद में लगा था, आज फाइनली उसके हिस्से कामयाबी आई थी और उसकी खुशी हल्की मुस्कान के रूप में उसके लबों पर उभर आई थी। कल ही तेरे जाने का इंतजाम करवाता हूँ और जल्दी वापस मत आना, बीते 3 सालों में तूने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, तो अब जब बाहर जा रहा है तो थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताना। अर्णव ने फीका सा मुस्कुराते हुए सहमति में सर हिला दिया। जानता था कि उसके वजह से कबीर बहुत परेशान रहता है, एक वही तो रह गया था उसके पास जिसने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ निभाया था, उसका सहारा बनकर उसे संभाला था। अर्णव, घर पर बात हुई तेरी? कुछ पल की खामोशी के बाद कबीर ने ये सवाल किया और दर्द की एक लहर सी अर्णव के चेहरे को छूकर गुजर गई। मैंने फ़ोन ही नहीं किया, हिम्मत ही नहीं होती, अब तो उनसे उसी दिन बात होगी जब धृति की माफ़ी कमाकर उन्हें उनकी बहू लौटाऊंगा। अर्णव ने भीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर कबीर के चेहरे पर गहरी उदासी और मायूसी के भाव उभर आए। उस बात को 3 साल बीत गए थे, पर ना तो अर्णव कभी लौटकर अपने घर गया, ना वो लोग यहाँ आए, ना उन्होंने अर्णव से कभी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और ना ही अर्णव ने कभी उनसे बात करने का प्रयास किया। एक भरा पूरा परिवार होते हुए वो यहाँ बिल्कुल अकेला हो गया था, पर किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये उसके अपने कर्मों का फल था। कबीर को यूं परेशान और उदास देखकर अर्णव के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। कबीर, सब तो मुझे छोड़कर चले गए, फिर तू क्यों आज तक मेरे साथ फंसा हुआ है? क्या तुझे मुझसे कोई शिकायत, कोई नाराजगी नहीं? मेरे कारण माधुरी तुझे छोड़कर चली गई, पर बीते 3 सालों में तूने कभी मुझे अपनी मोहब्बत को खोने के लिए ब्लेम नहीं किया, जबकि तेरे इस अकेलेपन और दुख की वजह मैं हूँ। तूने तो हर कदम पर मुझे रोकने और सही रास्ता दिखाने की कोशिश की थी। तूने समझाया था मुझे कि अपने बदले के लिए धृति से शादी ना करूं, अपने गुस्से में इतना नीचे ना गिरूं कि कल को खुद से ही नजरें ना मिला सकूं। पर मैंने ही कभी तेरी कोई बात नहीं सुनी, हमेशा वही किया जो मैंने चाहा, जो मुझे सही लगा। पर फिर भी मेरे गुनाहों की सजा में तू आधा भागीदार बन गया, जबकि गलती तो सारी मेरी थी। नहीं, सारी गलती तेरी भी नहीं थी। हाँ, तूने गलत किया, पर तब हालात ही ऐसे थे, और वैसे भी मैं तेरा दोस्त हूँ। मैं चाहता तो तुझे रोक सकता था, पर मैंने पूरी कोशिश ही नहीं की, इसीलिए गलती मेरी भी है। सही कहती थी माधुरी कि जितना बड़ा गुनाहगार तू है उतना मैं भी हूँ, क्योंकि तू तो उस वक्त अपने भाई को खोने के दुख से सहम रहा था। तेरे सर पर बदले का जुनून सवार था। उस वक्त मुझे विवेक से काम लेना चाहिए था, माधुरी की बात पर विश्वास करके खुद से सच जानने की एक कोशिश करनी चाहिए थी। अगर मैं ऐसा करता तो शायद सच्चाई हमारे सामने आने में इतना वक्त नहीं लगता, और वक्त रहते हम सब संभाल लेते। गलती तो मुझसे भी हुई है और उसी की सजा है ये, पर इसके लिए मैं तुझे दोष नहीं देता। फिर तुझे इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़कर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। कबीर ने सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसने अर्णव को लाजवाब कर दिया। उसकी बातों और व्यवहार से साफ जाहिर था कि उसके मन में अर्णव को लेकर कोई द्वेष, नाराजगी या शिकायत नहीं थी, और अर्णव खुद को उसके अकेलेपन और तन्हाई का कसूरवार मानता था। उसके और धृति के बीच माधुरी और कबीर की मोहब्बत तो बेवजह ही कुर्बान हो गई थी। कुछ देर दोनों साथ ही बैठे, फिर कबीर अपने कमरे में चला गया। जब से अर्णव तन्हा हुआ था, कबीर उसके साथ ही रहने लगा था। अर्णव भी उठकर अपने कमरे में आया और कदम सीधे चेंजिंग रूम की ओर बढ़ा दिए। 3 साल बीत गए थे और इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। जो नहीं बदला था वो थी अर्णव की धृति के लिए मोहब्बत। आज भी वो कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा धृति उसे छोड़कर गई थी। उसका सारा सामान वैसा का वैसा रखा था। हाँ, एक बदलाव आया था। उस कमरे की दीवारों पर अब धृति की काफी सारी तस्वीरें सजी थीं, जिसमें से सबसे बड़ी और खास वो तस्वीर थी जो अर्णव ने उसके जाने से पहले ली थी। चेंजिंग रूम में जाकर अर्णव धृति के कपड़ों को छू छू कर देखने लगा, उसकी खुशबू को अपनी रूह में बसाने लगा।
सालों बीत गए थे, पर आज भी उसकी चीजों में धृति की खुशबू समाई हुई थी, जो अर्णव को उसके होने का एहसास करवाती थी, और यही एक जरिया था जो अर्णव को धृति से जोड़कर रखती थी, जिससे वो धृति को अपने पास महसूस करता था और जो उसे इंतजार करने की हिम्मत देती थी। दार्जिलिंग, कतारों में बने बाकी घरों से कुछ दूरी पर बना छोटा सा लड़की का कॉटेज नुमा खूबसूरत सा घर। घर के सामने पतली सी सड़क, जिसके दूसरी तरफ चाय के बागान थे। वो संकरी सड़क उस बागान और कॉटेज के बीच बाउंड्री का काम करती थी। सड़क आगे जाकर मुख्य सड़क से मिलती थी और उसके दूसरे छोर पर घनी बस्ती थी, पर उस बस्ती से कुछ दूरी पर होने के कारण वहाँ का वातावरण शांत और मनमोहक था। चाय के बागानों से आती भीनी भीनी सी खुशबू से हवा महकती रहती थी, जो मन को ताजगी से भर दिया करती थी। शाम से ही मौसम कुछ खराब था, बिन मौसम बरसात के आसार थे। शीतल बयार बह रही थी, माहौल में ठंडक खुलने लगी थी। एक जोड़ी कदम उस कॉटेज के आगे बनी सीढ़ियां चढ़ते हुए गेट के बाहर रुके। ऊपर से पहने लॉन्ग कोट में उस शख्स का पूरा वजूद समाया हुआ था और उसकी बड़ी सी कैप से आधा चेहरा ढका हुआ था। उस शख्स ने दरवाजे के साइड में लगी डोरबेल बजाई। चंद मिनटों में दरवाजा खुल गया। सामने माधुरी खड़ी थी और उसके साथ ही एक करीब 2 साल का बच्चा भी खड़ा था, जो मम्मा पुकारते हुए गेट पर खड़ी लड़की के पैरों से लिपट गया था।